नमस्कार आदाब दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने का वक्त आ गया है क्योंकि आज मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में इतिहास की पढ़ाई का दिन आ गया है। तो देर किस बात की, चलिए सुनते हैं कि आपके पसंदीदा शिक्षक क्या खास बता रहे हैं आज।
मैं रामबोध कुमार, प्रश्न उच्च विद्यालय नगर नौसा में इतिहास शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। बच्चों, आज हम मुख्य रूप से 11वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में यात्रा विवरणों के बारे में वर्णन करेंगे। मुख्य रूप से भारत आने वाले महत्वपूर्ण यात्रियों में मेघास्थनीज, फाययान, फेनसांग, अलबुर्नी, इब्न बतूता और फ्रांसीसी बर्नियन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनमें मेघास्थनीज, फाययान, फेनसांग प्राचीन भारत में आए थे और मध्यकाल भारत में मुख्य रूप से अलबुर्नी, इब्न बतूता और फ्रांसीसी बर्नियन के नाम का चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में अलबुर्नी के बारे में, अलबुर्नी द्वारा विश्व रूप से भारतीय की सभ्यता संस्कृति का जो विस्मरण किया गया उसके बारे में अध्ययन किए हैं। अलबुर्नी के अनेक पुस्तकों की रचना की, उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को निश्चित संख्या ज्ञात नहीं है। वह स्वयं 114 पुस्तकों लिखने का दावा करता है, इनमें से अधिकांश उपलब्ध नहीं है। इनकी दो पुस्तकें उपलब्ध हैं, अथरूला वाकिता किताबुल हिंद तथा अथवा तहकीकाके हिंद। इनमें किताबुल हिंद भारत से विवरण से स्पष्ट है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण यात्रियों में इब्न बतूता, अलबुर्नी के बाद भारत आने वाला दूसरा विख्यात यात्री इब्न बतूता था। उसका वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। वह मौलाना बरउद्दीन तथा शेख श्यामसुद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। इब्न बतूता उसके मूल कुल का नाम था। उसका जन्म मोरक्को के तौंजियर नगर में हुआ था। उसकी जन्मतिथि 24 फरवरी 1314 थी। उसका परिवार शिक्षित एवं प्रतिष्ठित था। यह परिवार इस्लामी कानून सीरिया की जानकारी के लिए विख्यात था। युवावस्था में ही 22 वर्ष की उम्र में वह गृह त्याग कर 14 जून 1325 को लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। यह घटना उसके लिए ऐसी थी जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य यहां से आरंभ होता था। यहां से वह दिल्ली, जो तुगलकाबाद सुल्तानों की राजधानी थी, की ओर बढ़ा। वह उच्छ और मुल्तान के मार्ग से अबोहर, सिरसा, हांसी, पालम इत्यादि हो जगह जाकर सुल्तान से भेंट की। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। स्वयं इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान उसे राजधानी अर्थात दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 12 सहस्त्र दिनार राजकोष में दिए जाने तथा जिन लगाम सहित अश्व और महारवि खिलकत प्रदान करने का सम्राट का आदेश है। दिल्ली से तिलपत, बयान, अलीगढ़, कन्नौज, चंदेरी, उज्जैन, दौलताबाद, खम्बात की यात्रा करते हुए इब्न बतूता मालाबार तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। वहां से वह मालदीव गया और 18 महीने तक काजी के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। मालदीव से उसने शरणद्वीप श्रीलंका की यात्रा की। इब्न बतूता के चीन के यात्रा वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के विवरण से की जाती है, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चीन की यात्रा की। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा गया। यह वृत्तांत रिहला के नाम से विख्यात है। बाद में इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। रिहला का महत्व इसलिए है क्योंकि 14वीं शताब्दी के भारत की वास्तविक दशा और उसमें भी तुगलक शासन के लिए इतिहास का बर्नी की तारीख फिरोजशाही से अतिरिक्त रिहला की भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी वर्णन शैली भी ऐसी मनमोहन है कि ऐतिहासिक पात्र जीवन में प्रतीत होते हैं। अनेक इतिहासकारों ने इब्न बतूता के सफरनामा की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के कुतुब मीनार का वर्णन करते हुए वह कहता है कि इसकी सीढ़ियां भीतर से इतनी चौड़ी थी कि हाथी तक ऊपर चढ़ जाता था। चूंकि इब्न बतूता ने अपना विवरण स्मृति के आधार पर लिखवाया था, इसलिए उसमें अनेक अशुद्धियां भी मिलती है। इब्न बतूता के बाद भी अनेक यात्री भारत आए। इन लोगों ने फारसी में अपने वृत्तांत लिखे। अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। भारत में यूरोपीय यात्री, अरब यात्रियों के अतिरिक्त 16वीं शताब्दी से यूरोपीय यात्रियों का भी भारत आना जाना लगा हुआ। इन यात्रियों में जेसुइट रॉबर्ट नोबिली, दुरांते बारबोसा, जीन बैरिस्ट टेवर्नियर, पेलसट, विलियम हॉकिंग्स, रॉल फिच, एडवर्ड टेरी, सर थॉमस रॉ, मनुकी और फ्रांसीसी बर्नियन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये विभिन्न राष्ट्रीयता के थे, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी यात्रियों में जीन बैटिस्ट टर्बिनियर तथा फ्रांसीसी बर्नियन के यात्रा वृतांत 17वीं शताब्दी के भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। टर्बिनियर अपने समय सबसे अधिक विख्यात यात्री था। पेशे से वह जौहरी था। उसने 6 बार भारत की यात्रा की। एक जौहरी होने के कारण उसने गोलकुंडा के हीरो की खान देखी। उसे शाही खजाने के जवाहरतों का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया जाता था। उसने विश्वविख्यात कोहनूर हीरा भी देखा था एवं उसका रोचक वर्णन किया। उसकी मुख्य रुचि व्यापार और भारतीय रत्नों में थी। टर्बिनियर का विवरण मुगल कालीन आर्थिक इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यूरोपीय यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर एक कुशल चिकित्सक होने के अतिरिक्त इतिहासकार भी था। वह मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में 1656 के आरंभ में भारत आया। यहां वह 1668 तक रहा। जिस समय बर्नियर भारत आया उस समय मुगल साम्राज्य राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ था। शाहजहां के पुत्रों दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। वह मुगल दरबार में दारा के चिकित्सक के रूप में प्रविष्ट हुए। बर्नियर ने भारत के विभिन्न भागों नगरों की यात्रा की। उसने अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, मुस्लिपट्टनम, सूरत, गोलकुंडा, कश्मीर, बंगाल एवं अन्य स्थानों की यात्रा की। उसने मुगल सेना के साथ भी यात्रा की। कश्मीर की यात्रा पर जाने की तैयारी के संबंध में वो कहता है, बर्नियर का यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर 1670 में फ्रांस में पहली बार प्रकाशित हुआ। बाद में इसके अनुवाद अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतावली भाषाओं में प्रकाशित हुए। उसने अपनी पुस्तक को फ्रांस के सम्राट लुई 14वें को समर्पित किया था। बर्नियर के यात्रा वृत्तांत की मुख्य विशेषता यह है कि वह भारत की स्थिति का अध्ययन यूरोपीय और फ्रांसीसी मॉडल को ध्यान में रखकर तुलनात्मक दृष्टि करता है। भारतीय व्यवस्था को वह यूरोपीय व्यवस्था से कमतर मानता है। साथ ही उसने यूरोप को चेतावनी दी है कि अगर वे मुगल व्यवस्था को अपनाएंगे तो उनके परिणाम घातक होंगे। निस्संदेह बर्नियर की भारत के विषय में यह धारणा विद्वेषपूर्ण और नस्लवाद प्रभावित होता है। इस प्रकार इब्न बतूता और बर्नियर के यात्रा वृत्तांतों से तत्कालीन भारतीय जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इनके यात्रा वृत्तांतों का अध्ययन करते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कहीं पर इनके विवरण एकांगी और भ्रामक है। साथ ही इन लोगों ने भारत को अपने नजरिए या एक विशेष दृष्टिकोण से देखा है।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।